आज उन्होंने इब्राहिम साहब तशरीफ नहीं लाए, उनकी तबीयत नाकाज है। अभी अभी मुझे पैगाम मिला तो बाल औकात इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ती है। तो उनका अभी अभी पैगाम मौसूल हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है और आज वो तशरीफ नहीं ला सकेंगे। वैसे भी आज मदरसे भी तशरीफ नहीं लाए, मुझे तो पहले ही खतरा लग रहा था शायद शाम को इस में ही मुझे ही बैठना पड़ेगा। बहरहाल ये दीन की खिदमत है, बड़ों की तरफ से अगर कोई काम लगा दिया जाए तो खुश दिली से उसको अंजाम देना चाहिए। और जब बड़े कोई काम लगाते हैं तो मैंने तो साफ महसूस किया है कि अल्लाह ताला उस काम को करवा ही देते हैं, ना अहलियत के बावजूद करवा देते हैं। तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह के अशार, मैंने सोचा कि अशार पढ़ लेते हैं ताकि तलबा भी थके हुए होते हैं। बयान तो मौलाना इब्राहिम साहब का ही होता है भाई, हम तो अशार सुना देंगे आपको। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, तेरे आशिक को लोगों ने समझा है कम। इस मिसरे के दो मतलब हैं। चलिए ये शेर जब आएगा जब सुनाऊंगा, तशरीह उसी वक्त होगी, अभी नहीं। सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, जाने क्या पा गए जाने आलम से हम। जाने आलम से मुराद अल्लाह ताला। हदीस में आता है कि अगर जमीन पर जब तक कोई अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा तो कयामत नहीं आएगी। मालूम हुआ अल्लाह का नाम ही जाने आलम है। अल्लाह की जात तो बड़ी चीज है, अल्लाह का नाम ही इस आलम की जान है। जो अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी जब कोई नहीं रहेगा उस वक्त कयामत आ जाएगी। तो अगर फरमाते हैं सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, जाने क्या पा गए जाने आलम से हम। अल्लाह के आशिकों की यही शान होती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अजीब आदमी है, एक जगह फरमाते हैं कि सरनिगुनम ही रिहा कुन पाए मन। फारसी वाले बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ, उनको बड़ा मजा आता है जब फारसी के अशार आते हैं, उनको बहुत मजा आता है। सरनिगुनम ही रिहा कुन पाए मन, फहम को दर जुमले अजजाए मन। जब जानवर रस्सी तोड़ाता है ना, रस्सी तोड़ के या रस्सी छुड़ाकर भागना चाहता है, सबसे पहला काम उसका ये होता है वो सर झुकाता है, सर झुकाता है और सर झुका के ये पूरी ताकत को वो मुश्तमे कर लेता है और फिर भागता है। आपने देखा होगा जब जानवरों की लड़ाई हो रही होती है उसमें भी वो सबसे पहले सर झुकाते हैं, ये सर झुकाकर वो अपनी ताकत जमा कर लेते हैं और फिर हमला करते हैं। तो मौलाना रूम भी फरमाते हैं मैं उस जानवर की तरह हूं ऐ दुनिया वालों, तो मेरे पैरों में फिर वो भाग जाता है रस्सी तोड़ के, तुम मेरे पाँव को मेरे कदमों को रिहा कर दो, रस्सियां खोल दो। फहम कू दर जुमले अज्जाए मन, कू जो है ना कू, देखो फारसी वालों समझना ये मुहफ्फज़ है के और ऊ का, फहम के ऊ, उस चीज को समझो जो मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर चुकी है और वो क्या है, अल्लाह की मोहब्बत। मैं क्या कहूँ कहाँ है मोहब्बत कहाँ नहीं, ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैं क्या कहूँ कहाँ है मोहब्बत कहाँ नहीं, रग रग में दौड़े फिरती है नश्तर लिए हुए, रग रग में दौड़े फिरती है नश्तर लिए हुए, मैं क्या कहूं कहां है मोहब्बत कहां नहीं। और ऐसा नहीं कि ये शायराना बात हो, महज शायराना तखय्युल नहीं है। हदीस में आता है और हदीस भी हदीस कुदसी है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा इतने करीब हो जाता है, मुझसे इतने करीब हो जाता है, नवाफिल नवाफिल जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, इतने करीब हो जाता है कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब है इस चीज का? यह है नवाफिल का मकाम। करते करते रुसूख जब हासिल हो जाता है, दवाम के साथ जब करता रहे नवाफिल पढ़ता रहे, तो ये ताल्लुक नसीब होता है कि मौलाना रूम भी इसको किस कैफियत को बयान फरमाते हैं, गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुअत गरचे अज हल्कू में अब्दुल्लाह बुअत, उसका कहा हुआ अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उसकी जबान बन जाता हूं, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं हदीस कुदसी है, तो उसका कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ होता है। अगरचे वो मुंह से एक अल्लाह के बंदे के मुंह से निकली है बात, लेकिन वो कही हुई अल्लाह की होती है। गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह बुअत गरचे अज हल्कू में अब्दुल्लाह बुअत, ये मकाम हासिल हो जाता है उसको। तो ये ख्वाजा साहब का जो शेर है ऐसी थोड़ी है, मैं क्या कहूं कहां है मोहब्बत कहां नहीं, रग रग में दौड़े फिरती है नश्तर लिए हुए। तो हाँ, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि उस बात को समझो जो मेरे हर पूरे जिस्म में सरायत कर चुकी है, यानी अल्लाह की मोहब्बत। और एक जगह फरमाते हैं कि गैरे आ जंजीर जुल्फे दिलबरम, गैरे आ जंजीर जुल्फे दिलबरम, गर्दो सद जंजीर आरी बरदरम। वो ये जो जंजीर है तुम बांधते हो है दुनिया वालों रस्म रवाज की, ये करो ये करो ये मत करो, पता नहीं तुम किस मुल्ला के हत्ते चढ़ गए हो, पता नहीं किन दकिया नूसियों के तुम पल्ले बन गए हो, हमारी बात मानते ही नहीं हो, रस्म और रवाज पे चलते ही नहीं हो, भाभी के साथ बैठ के खाना ही नहीं खाते, मखलूत तकरीबात में जाते ही नहीं हो, टीवी के सामने बैठते ही नहीं हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम अल्लाह की जुल्फ की गैरे आ जंजीर जुल्फ दिलबरम, मेरे दिलबर की जुल्फ की जंजीर के अलावा, और मुराद शरीयत है, मुराद यहां शरीयत है, देखो ताबीर मुख्तलिफ है, ताबीर थोड़ी सी आशिकाना है, वही बातें तो ये मजलूब अपनी बढ़ में कहता है, वही बातें तो ये मजलूब अपनी बढ़ में कहता है, जरा संभले हुए लफ्जों में जो तूने कहीं साकी, जरा संभले हुए लफ्जों में जो तूने कहीं साकी। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं किससे? हकीम उल उम्मत थानवी से। आप जो कुरान और हदीस हमें बयान करते हैं, हम उसी को तो आशिकाना और शायराना तखय्युलात में बयान कर देते हैं, वही बातें तो ये मजदूब अपनी बढ़ में कहता है, जरा संभले हुए लफ्जों में जो तूने कहीं साकी। अब देखिए संभले हुए लफ्ज पे एक मिसाल याद आई, इन्नल्लाह यबअथु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, ये हदीस है, संभले हुए अल्फाज हैं, हदीस क्या है ना, संभले हुए अल्फाज हैं कि हर सदी के आखिर में, सौ साल के आखिर में अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजते हैं इस उम्मत के नफे के लिए। नबी नहीं आएंगे लेकिन मुजद्दिद आते रहेंगे, ये अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर। तो उसका काम क्या होगा, मयजदिदुल्लाह दीना, दीन उम्मत के सामने दीन को नया करके पेश कर देगा कि फुलां फुलां चीज गलत है। जैसे हम सुनते ना आदाब माशरत, हकीमुल उम्मत थे, मुजद्दिद थे अपने वक्त के, और हजरत ने खुद फरमाया कि पता नहीं मैं मुजद्दिदुल मिल्लत तो हूं या नहीं, लेकिन मुजद्दिद माशरत जरूर हूं। ये तो खुद फरमाया था हजरत। तो खैर ये संभले हुए अल्फाज हैं। हजरत जी के खलीफा थे वासिल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वासिल रहमतुल्लाह अलैह, उनका ही शेर है कि कई बरसों में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, कई बरसों बर, साकी से मुराद अल्लाह ताला, कहीं बरसों में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैं खाना। मैं खाने का जो बिगड़ा हुआ दस्तूर था उसको बदल के रख देता है और दुरुस्त कर देता है। ये मजूब की बढ़ है और वो संभले हुए अल्फाज हैं जो हदीस के हैं, है ना। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे दीगर अकाबिर के जो अशआर होते हैं वो कुरान और हदीस से ही मुस्तफाद होते हैं। तो ख्वाजा साहब ये मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैं वो ये जो जंजीर जुल्फ़े दिलबरम, यानी अल्लाह की शरीयत के अलावा तुम कुछ किसी रस्म और रवाज की जंजीरों से मुझे मेरे पैर बांधना चाहोगे तो मैं सबको तोड़ दूंगा। 200 जंजीरें भी ले आओ ऐसी अपने रस्म और रवाज की तो मैं सबको तोड़ के रख दूंगा। गर्दोसत जंजीर आरी बरदरम। और एक जगह फरमाते हैं खूब तर्दी सम नदीदम शरबते, खूब तर्दी सम नदीदम शरबते, और दी मरज खुश तर नबाशत सेहते। मौलाना रूम अजीब आदमी है, फरमाते हैं अगर तुम ये कहते हो ये दीवाना हो गया, ये मुल्ला हो गया, पता नहीं किस मुल्ला के हत्ते चढ़ गया, न जाने इसको क्या हो गया, क्या मरज लाहिक हो गया, क्या रोग इसको लग गया, ये अल्फाज मिलते हैं ना, तूबा लिल गुराबा, इन्नल इस्लाम बदा गरीबा व सयाउदु कमा बदा फतूबा लिल गुराबा। इस्लाम जब आया था तो अजीब गरीब था, इसके चलने वालों को भी अजीब गरीब कहा जाता था। अजाल अल आलिहा इलाह वाहिदा इन हाजा लशयुन उजाब। अजीब गरीब, अजीब बात है। तो और अनकरीब एक जमाना आने वाला है कि दोबारा अजीब गरीब हो जाएगा, लिहाजा वो जमाना आ गया। अब कोई कहे जी शरई पर्दा करना चाहिए, मखलूत तकरीबात में नहीं जाना चाहिए, वहां पे जहां बेपर्दगी हो, औरतें मर्द साथ बैठे हुए हो वगैरह वगैरह, गाने नहीं सुनने चाहिए वगैरह। वो कहते हैं रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब ये हाल है। तो खैर मौलाना रूम फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों अगर तुम ये कहते हो कि न जाने इसने क्या जहर पी लिया है, तो मौलाना रूम फरमाते हैं खूब तर्जी सम न दीदम शरबते, मैंने इस जहर से अच्छा कोई शरबत ही नहीं पाया दुनिया में। जी मरद खुशतर न बाशक से हदे, और अगर तुम ये कहते हो कि न जाने इसको क्या रोग क्या बीमारी लग गई है, तो मैंने इस बीमारी और इस मरद से बढ़ के सेहत को नहीं पाया, सेहत भी इससे कमतर चीज है जिसको तुम मरद कह रहे हो। तो वहां ये है आशिकों की शान, क्या है सारे आलम को खातिर में लाए ना हम, जाने क्या पा गए, जाने क्या न जाने हमें क्या मिल गया अल्लाह ताला से, क्या मिल गया अल्लाह से, क्या मिल गया उनका ताल्लुक मिला, उनका ताल्लुक। हजरत खान भी फरमाते हैं हजरत के मवाइज में है कि एक आदमी वो एक उसकी बीवी दोनों गरीब थे, बहुत गरीब घराना था, तो बीवी जो है नमाजी बन गई, नमाज पढ़ने लगी पाबंदी से, तो हालात में कुछ फर्क नहीं आया। एक दिन उसके शौहर ने चिल्ला कर उससे कहा कि तुझे ये नमाज पढ़ रही है, क्या मिला तुझे नमाज से? इतने दिन से नमाज पढ़ रही है, हमारे हालात तो बदले नहीं, कोई पैसा वैसा आता कुछ भी नहीं हुआ, तो तेरी नमाज से तुझे मिला क्या? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं होता ना तो मैं ये कहता कि नमाज, अगर वो ये कहता ना नमाज से मिला क्या, तो मैं कहता नमाज मिली। नमाज से क्या मिला? नमाज मिली। ये नमाज कोई कम चीज है? सारे आलम को खातिर मिलाए ना हम, जाने क्या पा गए जाने आलम से हम। सारा जहां खिलाफ हो परवाह ना चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी जाना ना चाहिए, बस इस नजर से जांच के कर तू ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या ना चाहिए। सारा जहां खिलाफ हो परवाह ना चाहिए, पेशे नजर तो मर्जी जाना ना चाहिए, बस इस नजर से जांच के कर तू ये फैसला, यानी हम और आप फैसला करें क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या ना चाहिए। बस ये है। सुबह गुलशन न हो क्यों मेरी शाम गम, गम ही में पा गए आपको भी तो हम। जो मेरे गम की शाम है, जब मैं अपने दिल को तोड़ के गुनाहों से बचता हूं तो गमों की शाम हो जाती है। भाई बदनजरी का इरादा दिल में वलवले उठ रहे हैं और आदमी नजर झुकाए तो गला नहीं घुटता उसका? कोई आशिक मिजाज अपनी नजर को जब बचाता है तो आरे दिल पे चलते हैं, कलेजा मुंह को आता है। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, जो कुरान में है ना, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। कोई आशिक मिजाज अपनी नजर को जब आशिकाना मिजाज हो नजर को बचा रहा है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, आ जाते हैं बेपर्दा हसी यूं मेरे आगे, जैसे मेरी आंखें ही नहीं दिल ही नहीं है। तो कोई आशिक मिजाज अपनी नजर को जब बचाता है तो आरे दिल पे चलते हैं, कलेजा मुंह को आता है। कितना अजीम काम है ये, अपनी नजर को बचाना। अल्लाह क्या कुछ ना देंगे कि मेरा बंदा अल्लाहु अकबर, इसको क्या रुकावट है? कुछ नहीं। और अगर चलो किसी से शर्म आ रही है तो काला चश्मा लगा के बदनजरी कर ले, मगर ये फिर भी रुकता है, है? मेरे डर और खौफ की वजह से निगाह बचाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह को इस पे प्यार आता है, अल्लाह इससे मोहब्बत फरमाने लगते हैं ऐसे बंदे से, ऐसे बंदे को अल्लाह की महबूबियत अता हो जाती है। तो जब इसको गम होता है ना नजर, मैं एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं कि दिल में वलवला उठा, करो नजर डालो, मगर नहीं डाली तो दिल को गम हुआ ना, तो शाम में गम हो गई, गम की शाम हो गई। मगर इस गम की शाम पर अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह को प्यार के मेरा बंदा, इसको कोई रुकावट नहीं थी मगर इसने नजर बचाई, गुनाह से बचा, तो अल्लाह को प्यार आया। फौरन ही जैसे ही गम की शाम हुई तो अल्लाह इससे राजी हुए, क्योंकि इसने अल्लाह की खातिर नजर को बचाया। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला है खुशियों के खालिक, वो फौरन खुशियां बरसा देते हैं इसके दिल पर। गुनाह से बचते ही खास सुरूर और कैफियत और खुशी हासिल होती है, आप तजर्बा करके देखें, ये खास कैफियत और सुरूर और खुशी हासिल होती है। ये कैफियत और खुशी क्या है? वो जो गुनाह से बचने का गम आपने उठाया अल्लाह की खातिर, अल्लाह उस गम पर खुशी बरसा देते हैं। और खुशी बरसाते क्या, मौलाना रूम फरमाते हैं, मौलाना रूम ने इससे बढ़कर कहा है, फरमाया कि गर उ खाहद आईने गम शादी शवत, عین بندے پائے آزادی شود. اگر اللہ چاہے تو عین غم کو عین غم کو اللہ تعالیٰ خوشی بنا دیں گے. یعنی عین غم کو خوشی بنا دینا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلید مثنوی لکھی ہے, مثنوی کی شرح ہے, اس میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آج کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو, یہ جو ہے کلید مثنوی. حضرت والا کی پاس جو تھی 24 جلدوں میں تھی, پرانی چھپی ہوئی تھی, 24 جلدوں میں وہ مثنوی تھی. اب تو 11 جلدوں میں آ گئی ہے, تالیفات والوں نے چھاپی ہے. اس وقت جو حضرت والا کا اپنا ذاتی نسخہ تھا, میں نے اسی سے استفادہ کیا ہے, تو وہ 24 جلدوں میں تھی, جہاں بجا حضرت کے نوٹ لگے ہوئے اس پر, ابھی بھی وہ خانقاہ میں موجود ہے. تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ عین غم کو فرماتے ہیں عینیت مصطلحہ. عینیت مصطلحہ ہے, عینیت مصطلحہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غم کو غم رکھتے ہوئے, ایک تو یہ صورت ہے کہ غم کو ہٹایا اور اس کی جگہ خوشی لا کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ نہیں قادر؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. جب کوئی بندہ غم اٹھاتا ہے, اللہ گناہ سے بچنے میں اس کو غم ہوتا ہے, غم اٹھاتا ہے, اس کو غم ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس غم کو ہٹا کر خوشی لا کے نہیں رکھتے, اسی غم کو غم رکھتے ہوئے خوشی بنا دیتے ہیں, عین غم کو خوشی بنا دیتے ہیں. مولا روم عجیب آدمی ہے. گر وہ خواہد عین غم شادی شود, اگر اللہ چاہے اسی عین غم کو اللہ خوشی بنا دے. اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عین بندے پائے آزادی شود, پاؤں بندے ہوئے ہوں, جکڑے ہوئے ہوں, اور ان میں آزادی کا مزہ دینے پہ اللہ قادر ہے. مولا روم فرماتے ہیں. تو اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ میری شام غم کیوں نہ صبح گلشن بنے. صبح صبح آپ گلشن چلے جائیں, ساتھی بھی ساتھ ہوں, دوست بھی ساتھ ہوں, کتنا مزہ آتا ہے. تو صبح گلشن ہو جاتی ہو, تو شام غم کو صبح گلشن بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, جب کوئی بندہ گناہوں سے بچتا ہے. غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی تو ہم, خوشا آوازی سے پہم, خوشا یہ اشک رواں. حضرت والا ہی کا شعر ہے. خوشا آوازی سے پہم, خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے. جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے. کتنے حوادث آ جائیں اور آنسو بہنے لگیں, مگر غم کے ساتھ اس غم میں آپ مل رہے ہیں, اے اللہ آپ حاصل ہو رہے ہیں, تو پھر غم کا کیا غم ہے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. آپ تک جو موجے رنج و غم, گناہوں سے بچنے کا میں نے غم اٹھایا, اس موج میں بہ کر میں اے اللہ آپ تک پہنچ گیا, اور اس پہ سینکڑوں ساحل قربان ہوئے. یعنی ساحل سے مراد گناہوں کے مواقع ہیں, گناہوں کے مواقع. میں نے سب کو قربان کر دیا, اس غم کے سیلاب میں بہ کر میں آپ تک پہنچا. اور اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اتنا ہم اپنی حرام خواہشات کا خون کریں کہ ایک غموں کا دریا ہو, اس سیلاب میں بہ جائیں, تب ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان اولیاء الا المتقون, میرے ولی مجھ تک پہنچنے والے, مجھ تک رسائی حاصل کرنے والے صرف وہ ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں, یعنی گناہوں کا غم اٹھاتے ہیں, گناہوں کا غم اٹھا کر اور اس کے سیلاب میں بہ کر وہ مجھ تک پہنچتے ہیں. یہی طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. گناہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور اس غم اٹھانے پر, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے پر اللہ خوشیاں نصیب فرما دیتے ہیں, کیونکہ اللہ خالق خوشی ہے. صبح گلشن نہ ہو کیوں میری شام غم, غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی تو ہم. بس بھائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس پہ نشان لگا لو بھائی, آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر انہی کو باقی جو اشعار ہیں ان کو پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.